नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में मौजूदा जनगणना अभियान में जन भागीदारी की अपील की। दिल्ली पुलिस ने फर्जी अकाउंट हेराफेरी मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और यूनिसेफ इंडिया ने टीकाकरण और गैर संक्रामक रोग पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। दिल्ली सरकार ने भीषण गर्मी और लू से निपटने के लिए हीट वेव एक्शन प्लान लागू किया और दिल्ली मेट्रो ने कल अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले आईपीएल क्रिकेट मैच के लिए आखिरी मेट्रो का समय बढ़ाया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि देश में चल रही जनगणना प्रक्रिया केवल सरकार का काम नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है और इसमें सभी की भागीदारी जरूरी है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हर भारतीय को इस दुनिया के सबसे बड़े जनगणना अभियान के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं।
श्री मोदी ने पवन ऊर्जा के बढ़ते महत्व का भी जिक्र किया और कहा कि क्षेत्र में देश ने हाल ही में बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
अब भारत का विंड एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी 56 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। पिछले एक साल में ही करीब 6 गीगावाट नई क्षमता जुड़ी है। आज भारत विंड एनर्जी कैपेसिटी में दुनिया में चौथे स्थान पर है। यह हमारे इंजीनियरों की मेहनत है, यह हमारे युवाओं का परिश्रम है, यह देश की सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के दो चीज ब्रांड्स को ब्राजील में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं जो देश के डेयरी क्षेत्र में बदलाव और वैश्विक पहचान को प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मई महीने की शुरुआत बुद्ध पूर्णिमा जैसे पावन पर्व से हो रही है और इस अवसर पर उन्होंने देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और बताया कि अगले महीने 9 तारीख को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि मई का महीना 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की भी याद दिलाता है और उन्होंने देशभक्ति की भावना जगाने वाले सभी वीर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया।
गुरुदेव टैगोर लोगों के लिए ऐसे उद्योगों के पक्षधर थे जिनमें स्थायी रोजगार मिलने के साथ ही गांवों का भी कल्याण हो। उनके रविंद्र संगीत का प्रभाव आज भी दुनिया भर में बना हुआ है। मेरे लिए शांति निकेतन की यात्राएं अविस्मरणीय रही। यह वही इंस्टीट्यूशन है जिसे उन्होंने पूरे समर्पण भाव से सींचा और संवारा था। उन्हें एक बार फिर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि।
प्रधानमंत्री ने कहा कि बीटिंग रिट्रीट गणतंत्र दिवस समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
एयरफोर्स बैंड ने सिंदूर फॉर्मेशन बनाया, नेवल बैंड ने मत्स्य यंत्र फॉर्मेशन बनाया, वही आर्मी बैंड के परफॉर्मेंस में वंदे मातरम के 150 साल और क्रिकेट में भारत की सफलता को भी दर्शाया गया। बीटिंग रिट्रीट के बीते जाने के बाद ये सारी मेहनत, ये उपलब्धि धीरे धीरे ओझल हो जाती थी, लेकिन अब बीटिंग रिट्रीट का म्यूजिक पहली बार वेव्स ओटीटी पर भी उपलब्ध है।
श्री मोदी ने बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों का भरपूर आनंद लेने और कुछ नया सीखने की सलाह भी दी। दिल्ली पुलिस की उत्तरी जिला टीम ने फर्जी अकाउंट और शेल कंपनियों के जरिए करोड़ों की हेराफेरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी फर्जी कंपनियां बनाकर लोगों से ठगी करते थे। एक रिपोर्ट।
मामले की जांच करते हुए पुलिस ने बताया कि गिरोह ने सिर्फ 8 दिनों में करीब 16 करोड़ रुपए का लेन देन किया। आरोपी लोगों को नौकरी के नाम पर बैंक खाते खुलवाते थे, जबकि इन खातों का नियंत्रण खुद रखते थे। पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि अपना बैंक खाता किसी के साथ साझा न करें और अपने दस्तावेज को किसी व्यक्ति के साथ साझा न करें। एक अन्य कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रतिबंधित तथा नियंत्रित दवाइयों की अवैध तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से प्रतिबंधित टैबलेट, कैप्सूल और कफ सिरप के उत्पाद बरामद किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से 450 किलोग्राम से अधिक का मादक पदार्थ बरामद किया गया है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
दिल्ली यातायात पुलिस ने संगम योजना के अंतर्गत RWA और MWA के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। यह आयोजन व्यापक रूप से पिछले सप्ताह राजधानी के सभी ट्रैफिक गोल चक्रों पर किया गया। दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा कि इस दौरान उन्होंने यातायात और सड़क सुरक्षा से जुड़ी जानकारी, जैसे कि बाजारों और आवासीय क्षेत्रों के पास गलत तरीके से पार्किंग करना तथा स्कूलों के खुलने और बंद होने के समय भीड़भाड़ होने वाले विषयों पर चर्चा की। साथ ही ई रिक्शा स्टैंड, सड़क विक्रेताओं पर नियंत्रण और गलत पार्किंग सुधार पर भी चर्चा की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और यूनिसेफ इंडिया ने 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए टीकाकरण और गैर संक्रामक रोगों पर जन स्वास्थ्य संचार को मजबूत करना था। एक रिपोर्ट।
इस कार्यशाला में बच्चों और किशोरों में गैर संक्रामक रोगों से निपटने के लिए रोकथाम, शुरुआती जागरूकता और स्वस्थ व्यवहारों के बढ़ते महत्व पर बल देना था। जामिया के सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में 30 से अधिक विद्यार्थी, रेडियो जॉकी और मीडिया जगत से आए प्रतिनिधि शामिल हुए। इस अवसर पर जामिया के रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद मेहताब आलम रिजवी ने कहा कि अनुभवात्मक शिक्षा और सामाजिक जुड़ाव के लिए सहयोगी अकादमिक मंच अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं यूनिसेफ इंडिया की कम्युनिकेशन एडवोकेसी और पार्टनरशिप के प्रमुख जफरीन चौधरी ने कहा कि भारत का टीकाकरण कार्यक्रम हर साल लाखों बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाना जारी रखे हुए है, जो इसकी मजबूत प्रणालियों और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जामिया के सेंटर फॉर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के निदेशक प्रोफेसर रिहान खान सूरी ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान ज्ञान को व्यवहार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू आज बंगला साहिब गुरुद्वारा में आयोजित 20वें राग दरबार में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गहरे रागों में गाई गई गुरबानी की दिव्य गूंज ने मन में असीम शांति का अनुभव कराया और हमारी परंपराओं की गहरी आध्यात्मिक जड़ों की एक सुंदर याद दिलाई। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, सिख बंधु वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा आयोजित बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया के 303वीं जयंती के अवसर पर समारोह में शामिल हुए। दिल्ली विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन मंगलवार को होगा। उपराज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद 8वीं विधानसभा का 5वां सत्र बुलाने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर चर्चा हो सकती है। विधानसभा सचिवालय के अनुसार सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने भीषण गर्मी और लू की चुनौती को देखते हुए हीट वेव एक्शन प्लान 2026 को राजधानी में लागू कर दिया है। इस योजना के अनुसार 400 से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जरूरी दवाइयों और मेडिकल सामग्रियों की व्यवस्था की गई है। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार राजधानी के 30 से अधिक अस्पतालों में कूल रूम तैयार किए गए हैं। साथ ही 330 एम्बुलेंस को हर समय सेवा में तैनात किया गया है और मेडिकल कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। राजधानी के कई क्षेत्रों में वाटर एटीएम, लगभग 2000 वाटर कूलर्स और 11000 से अधिक कूलिंग पॉइंट स्थापित किए गए हैं। विद्यालयों में वाटर बेल सिस्टम लागू किया गया है, जिसके तहत विद्यार्थियों को समय समय पर पानी पीने के लिए सूचित किया जाएगा। इसके अलावा तपती धूप से बचने के लिए दफ्तरों में काम के समय में भी बदलाव किए गए हैं। हैं। बहुत अधिक हीट वेव की अवस्था में निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहरी कार्यों में पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बिजली आपूर्ति में कटौती नहीं की जाए। दिल्ली सरकार ने सभी विभागों, विशेषकर दिल्ली विकास प्राधिकरण, शिक्षा विभाग और दिल्ली जल बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि पशु पक्षियों के लिए भी पानी और छाया की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों को तेज धूप से बचने, पर्याप्त पानी पीते रहने और अपने परिवार तथा आसपास के लोगों का ध्यान रखने का आग्रह किया है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
राजधानी में भीषण गर्मी का दौर जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। विभाग के अनुसार कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कई स्थानों पर लू चलने की संभावना है। इसके साथ ही दोपहर के बाद गरज के साथ हल्की बारिश होने की भी संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड ने संजय जमुआर को पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। श्री जमुआर पूर्व भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी हैं, जिन्हें भारतीय रेलवे, दिल्ली मेट्रो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का अनुभव है। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड की स्थापना दिल्ली मेट्रो द्वारा सरकार के सहयोग से की गई है, जिसका उद्देश्य भारत में दिल्ली के बाहर और विदेशों में मेट्रो परियोजनाओं के साथ साथ संचालन और रख रखाव संबंधी कार्यों का सुचारू रूप से संचालन करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुछ इलाकों में मौसम संबंधी चुनौतियों के बावजूद देश में गेहूं का उत्पाद स्थिर है। वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं उत्पादन के बारे में मीडिया की खबरों के जवाब में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि लगभग 3,34,00,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फसल की बुआई की गई थी। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। एक रिपोर्ट।
कल खेले गए आईपीएल के 35वें मुकाबले में पंजाब किंग्स के खिलाफ 264 रन बनाने के बावजूद दिल्ली को अपने ही घर में हार का सामना करना पड़ा। पंजाब किंग्स ने 265 रन का रिकॉर्ड लक्ष्य हासिल करके 6 विकेट से जीत दर्ज की थी। दिल्ली की टीम अंक तालिका में 3 जीत और 4 हार के साथ छठे स्थान पर है और अब उसका मुकाबला आरसीबी जैसी एक मजबूत टीम से है, जो 7 मैच में 10 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। इस सत्र में दिल्ली का प्रदर्शन काफी औसत रहा है। पहले दो मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल्स को लखनऊ और मुंबई के खिलाफ जीत मिली थी, लेकिन उसके बाद गुजरात और चेन्नई से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि टीम ने वापसी करते हुए आरसीबी के खिलाफ जीत दर्ज की थी। अपने छठे मुकाबले में हैदराबाद और 7वें मुकाबले में पंजाब से मिली हार के बाद दिल्ली के लिए वापसी करना और भी कठिन हो गया है। टूर्नामेंट अब निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुका है, ऐसे में दिल्ली के लिए यह मुकाबला 2 अंकों से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
दिल्ली मेट्रो ने कल अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले क्रिकेट मैच के लिए सभी लाइनों पर आखिरी मेट्रो के समय को बढ़ा दिया है। इस फैसले से मैच के बाद वापसी में यात्रियों को सुगम यातायात मिल सकेगा। दिल्ली मेट्रो के आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यात्री बदलाव के समय की जानकारी ले सकते हैं। जाने माने फोटोग्राफर रघु राय का निधन हो गया है। वे 83 वर्ष के थे और 2 साल से कैंसर से जूझ रहे थे। श्री राय ने अपनी फोटोग्राफी से दुनिया भर का ध्यान खींचा था। उनकी फोटोग्राफी को अक्सर आधुनिक भारत का दृश्य अभिलेख कहा जाता है। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ी उनकी तस्वीरें यादगार रही हैं। उन्हें 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1992 में उन्हें अमरीका में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर नामित किया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में मौजूदा जनगणना अभियान में जन भागीदारी की अपील की। दिल्ली पुलिस ने फर्जी अकाउंट हेराफेरी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और यूनिसेफ इंडिया ने टीकाकरण और गैर संक्रामक रोग पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। दिल्ली सरकार ने भीषण गर्मी और लू से निपटने के लिए हीट वेव एक्शन प्लान लागू किया। और दिल्ली मेट्रो ने कल अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले आईपीएल क्रिकेट मैच के लिए आखिरी मेट्रो का समय बढ़ाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।